जी बिस्मिल्लाह والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم। आजम कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, आप कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग गुड डूइंग गुड। ओके, सो व्हाट डू वी हैव ऑन द कार्ड्स टुडे?
सो आज का जो टॉपिक है, वेरी फ्रैंकली इवन इनटू द फाइनल ईयर ऑफ माय ट्रेनिंग, जब मेरी ट्रेनिंग को चौथा साल कर चुका था, इवन देन मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि केयरर्स के साथ भी कुछ करना होता है। बिकॉज जो जनरल प्रैक्टिस थी वो ये थी कि पेशेंट की केयर करो, उस वो ही पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। केयरर्स को बस ये बताना है कि आपने पेशेंट का कैसे ख्याल रखना है, लेकिन क्या केयरर्स का भी कोई ख्याल हो सकता है? आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट। बट वन फाइन डे हुआ क्या कि एक डिमेंशिया पे एक सेमिनार था, एंड अ साइकियाट्रिस्ट जिनकी आप और मैं, हम दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आई वुड नॉट नेम हिम, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी टॉक दी अबाउट हिज फादर गेटिंग अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया एंड इस सब का उनके ऊपर और उनकी लाइफ पे क्या बर्डन हो रहा है एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू कोप विद दैट एंड हाउ दे आर मैनेजिंग दैट। सो इवन इन फोर्थ ईयर, और वो भी एक रैंडम टॉक पे जाके, जो कि अगर मैं वहां ना जाता तो कभी भी उसका एहसास ना होता, और वेरी फ्रेंकली इवन वो भी एक टॉक ही थी, और उसके बाद भी कभी ना हमने कभी किया अपनी ट्रेनिंग के दौरान, इवन किसी एग्जाम में भी नहीं पूछा कि बेटा माँ बाप के साथ क्या करोगे, और भी पूछता भी तो हमारा एक ही जवाब था कि माँ बाप को बताएंगे कि दवाई टाइम पे देनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो उस टॉक से मुझे ये अंदाजा हुआ, वरना ये चीज कभी भी जहन में उस तरीके से नहीं थी, कि वो जो फैमिली है और एक साइकियाट्रिक पेशेंट की जो फैमिली है उसके ऊपर किस किस्म का बर्डन आता है। एंड फिर ऑब्वियसली जब हमारे एग्जाम में पार्ट टू की तैयारी में इसको कुछ पढ़ा भी, लेकिन वो सिर्फ एक टॉपिक था, उसका कोई भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। और ये चीज बहुत निगलेक्टेड है, नो वन एवर थिंक्स अबाउट दिस।
आई कम्प्लीटली एग्री विद यू के बहुत ज़्यादा भी हो गया तो किसी एक एकेडेमिक डिस्कशन में उसके अगर अगर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस में चीज़ आई हो तो आ जाए, वरना वन थिंग दैट नाउ दैट यू मेंशन्ड है कि जब हम व्हेन वी आर स्पीकिंग टू पीपल इन द आउट पेशेंट, व्हेन वी आर स्पीकिंग टू पीपल इन यू नो जिनकी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, चाहे वो साइकोसिस के साथ डील कर रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ डील कर रहे हैं, कुछ बहुत ही सिवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनको फैमिली मेम्बर्स को मैनेज करना पड़ता है, डिमेंशिया के उनके पेरेंट्स को, किसी को डिमेंशिया हो गया है उनको मैनेज करना पड़ता है, वी वुड बी एबल टू सी कि जिनको हम ये समझा रहे हैं कि इनको दवाइयाँ किस तरह से देनी है, देर आर विजिबल साइंस ऑफ स्ट्रेस. And there are, for example, if there is a mother of a child and the child has learning disability or just popularly is understood as mental retardation, unko bhi we can tell that this is a lot for them. This is a lot for them. But just the practice outpatient mein wo is tarah se bani hoti hai ki okay, just deal with the patient. डील विद द डायग्नोस, जो आपने डायग्नोसिस किया है उसकी दवाइयां कौन सी हैं उसके साथ टू एक्सटेंड इट. हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम ये कह देते थे आपको भी दिखाने की जरूरत है, आप भी अपॉइंटमेंट लेके आइएगा एट बेस्ट. आप भी दवाई शुरू कर दें, ईजी वे आउट. तो देर इज दैट, बट यस, ना सिर्फ साइकियाट्रिक इलनेसेस बल्कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस, कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, फिजिकल इलनेस अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को है तो नेसेसरली उसका इन्फ्लुएंस बाकी घर वालों पे होता है. नॉट जस्ट द ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ देम इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट जस्ट कमिंग टू टर्म्स विद द इलनेस इटसेल्फ, के समबडी सो क्लोज टू अस, समबडी सो बिलव्ड टू अस हैज जस्ट टर्न्ड इनटू अनदर पर्सन इन सो मेनी डिफरेंट वेज. अगर हम कुछ साइकोलॉजिकल इलनेसेस की बात करें तो पर्सनैलिटी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है इन इन इलनेसेस के अंदर. और फिजिकल इलनेसेस में भी, अगर कोई स्ट्रोक किसी को हुआ है या इस तरह की इलनेसेस हुई हैं, देन दैट यू नो यू आर प्रैक्टिकली लुकिंग आफ्टर अ स्ट्रेंजर, somebody who was so near and dear to you. तो जस्ट कमिंग टू टर्म्स विद, यार ये हमारे साथ हुआ है, ये होता है क्या, हमें तो हमेशा लगता था कि किसी और के साथ होगा, तो उसका जो एक शॉक होता है, एडजस्टिंग टू दैट, इट टेक्स क्वाइट अ टोल, इट टेक्स क्वाइट अ टोल ऑन पीपल.
And Yusuf, it's not only वो adjusting to the shock, वो जो continuous care है, अगर हम ये मान भी लें कि उसका कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नहीं है, और अगर हम ये मान भी लें कि वो जो द पर्सन हैज एक्सेप्टेड दिस और उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब उनके लिए वो शॉक नहीं है, वो जो फिजिकल बर्डन है वो बजाते खुद इतना ज्यादा है कि वो एक 24 आवर जॉब बन जाती है। अगर आपके घर में कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, आपके घर में कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस का पेशेंट है, कोई मेजर साइकेट्रिक इलनेस का पेशेंट है, वो फिजिकल बर्डन इतना ज्यादा बन जाता है कि दैट लीड्स टू मल्टीपल फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो टू मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो वो इवन वो सिर्फ वो फिजिकल बर्डन बजाते खुद ही काफी है इंसान को, अगर मैं उर्दू का वो मुहावरा यूज करूँ, वो तोड़ने के लिए। वो जो साइकोलॉजिकल बर्डन है वो उसके अलावा है।
बिल्कुल. अब आजम, वन थिंग दैट आई एम पर्सनली लैकिंग इन हियर, कि हम ठीक है, वी मे हैव रेड स्टफ अबाउट इट, वी मे हैव टॉक्ड टू पीपल अबाउट इट, हमने अपने पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया होगा, शायद हमने उनकी फैमिली को इन कॉन्फिडेंस लेके उनकी फैमिली के मसाइल को भी एड्रेस किया होगा, लेकिन विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, के ग्रोइंग अप इन अ फैमिली इन विच योर ब्रदर हैड अ जेनेटिक डिजीज विच लेड फॉर हिम टू बिकम फर्स्ट वेरी वेरी डिपेंडेंट फिजिकली ऑन कॉन्स्टेंट केयर एंड देन इवेंचुअली पास अवे. तो इफ यू कुड शेयर स्पेशली व्हाट योर पेरेंट्स वेंट थ्रू एंड व्हाट यू एज अ फैमिली, बिकॉज वो जो पर्सपेक्टिव होगा वो दैट गोज बियॉन्ड एनी प्रोफेशनल ओपिनियन दैट और एडवाइस दैट वी मे हैव टू शेयर.
तो यूसुफ, मेरा भाई ही डाइड 3 years back इन 2017 जनवरी में एट द एज ऑफ 24, बट फॉर द पास्ट आई थिंक 18 years वी न्यू दैट उसको एक डिजीज है जिसको हम मस्कुलर, एक स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड वो फिजिकल बर्डन तो था ही था, बिकॉज ग्रेजुअली ही जस्ट वो सिर्फ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बेड पे आ गया, और वो ना खाना खुद, ना वॉशरूम खुद, और उसको कुछ वो अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे, वो फिजिकल बर्डन तो था ही था, बिकॉज उसकी हाइट तकरीबन मेरे बराबर थी, ही वॉज 6 फीट, उसका वेट अच्छा खासा था, तो उसको वॉशरूम लेके जाना, लेकर आना, और हम लोग सिबलिंग्स, मैं FSC के बाद से, इवन FSC में भी आधा अरसा हॉस्टल्स में, तो मेरा छोटा भाई हॉस्टल्स में, तो बट जो कुछ पेरेंट्स ने जिस तरीके से, एक तो फिजिकली, दूसरा सो मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, तो उस अरसे में, उस 8-10 साल में मेरे फादर का जो बिजनेस था वो बिल्कुल एक लिहाज से खत्म हो गया, और उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर घर से 10 से 15 मिनट की ड्राइव से इससे ज्यादा दूरी पे नहीं जा सकते थे, कि अगर भाई को वॉशरूम जाना पड़ गया तो अम्मी पीछे से क्या करेंगी, सो ही हैड टू बी इन 4-5 किलोमीटर्स, उससे ज्यादा दूर वो नहीं जा पाते थे कि अगर पीछे से कुछ हो गया तो मुझे वापस आना पड़ेगा, अगर मैं दूर हुआ तो क्या होगा। एक तो वो जो, और फिर रात को उठ के, इवन उसके आखिरी 1-2 साल में ही वॉज अनेबल टू के वो करवट भी ले सके, तो उसको पूरी पूरी रात उठ के करवट भी दिलानी, फिर उसकी एक्सरसाइज और वो सब कुछ। और बट लेकिन आई डो नॉट नो के मुझे बिल्कुल फ्रैंकली उस टाइम कभी ये ख्याल नहीं आया कि पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। ये साइकियाट्री की ट्रेनिंग के बाद और फिर जब जैसे जैसे बड़े हुए, और खास तौर पे जब मैं MBBS के बाद आके घर रहना शुरू किया आफ्टर 6-7 ईयर्स, एक तो ये वाली चीज, बट उसके बाद जो मेरे लिए जो चीज मेरे लिए आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज मेरे पेरेंट्स ने कैसे हजम की, कि फ्रॉम द डे वन ऑफ हिज डायग्नोसिस दे न्यू के इस बीमारी की एवरेज एज 23 से 24 साल होती है। तो जवान बेटे को रोजाना इस तरह देखना और फिर ये जानते हुए कि देर इज नो प्रोग्नोसिस, तो पर्सनली आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मैंने उन्हें कभी उस तरीके से अपनी मदर को देखा, लेकिन वैसे जनरली अपने फादर को कभी नहीं, कभी उस तरीके से भी बहुत ज्यादा कोई अपने आप को कोसते हुए या अफसोस करते हुए या रोते हुए मैं कभी मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ। और ये भी मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि दे कॉन्शियसली अवॉइडेड दैट, के ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो ज्यादा उस पे जो हैं वो फील ना करें। एंड इस ये डिजीज डायग्नोज होने का वो जो शॉक है कि आपके, और ये होती सिर्फ बेटों में है, कि आपके बेटे ने की एवरेज एज ये है, उसके में भी उसकी फिजिकल हालत ये होगी, और इवेंचुअली 23-24 साल की एज में हार्ट फेलियर एंड देन डेथ, उसका फिजिकल शॉक इतना है कि आई आई नो समवन के उनके बेटे को ये बीमारी डायग्नोज हुई इन लाहौर, वो फैमिली ट्रेन पे बैठी अपने घर गए, ट्रेन का सफर 5 से 6 घंटे का उनके घर का, अपने घर पहुंच गए। तो जब अपने घर पहुंचे तब उनकी सास ने उनसे पूछा कि तुम्हारी जूती किधर है, एंड द मदर वॉज नॉट वेयरिंग हर शूज। और उस वक्त फिर जब सब कुछ सोचा रिट्रोस्पेक्टिव में, तो सिर्फ जूती नहीं बल्कि सामान वो स्टेशन पे भूल आए और जूती वो हॉस्पिटल में भूल आए। सो द मदर वॉज वॉकिंग बेयर फुटेड, और वो पूरी फैमिली साथ थी, उनके हस्बैंड भी साथ थे, लेकिन घर पहुंचने का किसी का एहसास नहीं हुआ। सो दैट वॉज द शॉक, क्योंकि वो जो पूरा प्रोग्नोसिस जो सामने है कि अब यहां से एक अपहिल बैटल है, और उसका भी एंड ये है कि दूसरी तरफ एक खाई है। सो आई एम पर्सनली आई एम अनेबल के वो किस तरीके से उन लोग, मेरे पेरेंट्स ने और फिर उन लोगों ने भी, दे आर कोपिंग विद दैट।
एंड दैट्स समथिंग के दिस इज हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक ग्रोस नेग्लिजेंस आप कह लो कि हमारे प्रोफेशन की रही है कि द मदर द फादर और द चिल्ड्रन फॉर दैट मैटर इफ दोज हु आर डायग्नोस्ड आर द पेरेंट्स व्हाट ऑफ देम। हम डायग्नोसिस तो अनाउंस कर देंगे, बहुत कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो जिसकी डायग्नोसिस है उसके साथ एम्पथाइज कर लेंगे, लेकिन जो केयरर्स हैं उनके इस साइकोलॉजिकल शॉक को, उसकी एडजस्टमेंट को, उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल बर्डन इन टेकिंग केयर ऑफ देम फ्रॉम देयर ऑन इन, उसको एड्रेस करने के लिए वी हैव प्रैक्टिकली
So,
नथिंग
Yusuf,
प्लेस।
I'll tell you something. हमारी फैमिली में एक बच्चा जो के पैदा हुआ एज अ सीपी चाइल्ड, सेरेब्रल पाल्सी, और वी ऑल नो द प्रोग्नोसिस, जो डॉक्टर्स हैं हमें पता है कि उसने, अगर वो जिंदा रहेगा तो वो व्हीलचेयर पे ही रहेगा, और वो कुछ भी खुद नहीं कर सकेगा, वो भाई वो बोल नहीं सकेगा, वो सुन नहीं सकेगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, आम अल्फाज में कि उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो सकेगा। सो मेरी फैमिली में ही एक इस तरह का बच्चा, एक हमारे रिलेटिव्स में, एंड दे वेंट टू अ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने अपना चेकअप किया और उनके अल्फाज ये थे, सो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल के एक जनरली डॉक्टर्स इसको कैसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। उनके अल्फाज ये थे कि बेटा दुआ ये करो कि अगर ये जिंदा रहे तो ठीक रहे। सो इसमें जो इम्प्लिसिट मीनिंग है कि अगर ये ठीक ना हो सके तो फिर दुआ दूसरी तरफ क्यों होनी चाहिए। तो दैट्स हाउ हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं दे कंसोल द पेशेंट।
बिल्कुल ऐसे ही। आई मीन वी वुड बी एट ए कंप्लीट लॉस कि अब क्या करना है, क्या कहना है इन सिचुएशंस लाइक दिस, इन द वे थिंग्स आर। सारा सारा अहमद इज कमेंटिंग। सारा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पोस्ट दोस क्वेश्चंस हियर। अभी हमारे पास एक्सेस नहीं है आपके पुराने क्वेश्चंस का। इफ यू कैन कॉपी पेस्ट देम हियर, वी विल ट्राई टू टेक देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। ओके, सो आजम, लेट्स ट्राई टू डू द बेस्ट वी कैन के फॉर द केयरर्स ऑफ पीपल हु हैव क्रॉनिक इलनेसेस, लॉन्ग स्टैंडिंग डिबिलिटेटिंग इलनेसेस, चाहे वो साइकोलॉजिकल हों या फिजिकल हों, वट डू वी हैव टू ऑफर? वट शुड दे बी, वट शुड दे नो, हाउ शुड दे बी केयर्ड फॉर?
तो ये सब हमें इसको डिवाइड करना चाहिए कि वो जो जो केयरर्स की केयर है दैट शुड बी डिवाइडेड इन के उनकी फिजिकल केयर क्या होगी और उनकी साइकोलॉजिकल केयर क्या होगी।
बिल्कुल सही है।
सो फर्स्ट फिजिकल केयर, तो इन फिजिकल केयर हम सब ने, अगर हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनकी फैमिलीज में इस तरह के कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेसेस वाले लोग हैं, तो हम देखते हैं कि उनके साथ कोई एक बंदा अटैच्ड होता है जो कि उनके 24 घंटे का ख्याल रख रहा होता है। उन्होंने वॉशरूम कैसे जाना है, कपड़े कैसे चेंज करने हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, मेडिसिन क्या है, 24 घंटे का ख्याल उनका रख रहा होता है। सो वट इज हैपनिंग हेयर कि वो जो बंदा जो के बीमार है उसको तो केयर मिल रही है एक बंदे से, लेकिन अनलेस कि कोई और कोई मसला हो कि और कोई बंदा अवेलेबल ही ना हो, लेकिन अगर एक ही बंदा अगर 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है तो उसके ऊपर फिजिकल बर्डन कितना होगा। इफ नो वन इन द फैमिली, अगर उसके बर्डन को कोई एज अ टाइम टेबल या डेज डिवाइड करके या वीक्स डिवाइड करके उसको कोई डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर, और फिर आप हम सब ये भी देखेंगे कि अगर उस बंदा जो के डिजीज है अगर उसकी कोई मेडिसिन मिस हो जाएगी, उसके कोई कोई ऊंच नीच हो जाएगी, कोई उसका कोई काम खराब, कोई चोट लग जाएगी, तो उसका सारा ब्लेम फैमिली ये कहेगी कि तुम्हारा काम था। इट्स लाइक कि सिर्फ तुम ही जिम्मेदार थे, हमने तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दी थी, अगर कुछ हुआ है तो तुम जिम्मेदार हो। सो ये वाला जो एक इशू है इसको एड्रेस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हम हमारे घरों में, हमारा कोई बाप बा माँ बाप बहन भाई, कि अगर हम उसकी तमाम जिम्मेदारी सिर्फ एक बंदे को दे रहे हैं और हम लोग उसके साथ उसकी हेल्प करने को और टाइम डिवाइड करने को तैयार नहीं है। सो हम एक एक बीमार शख्स की केयर करते हुए एक दूसरे शख्स को हम डेलिब्रेटली बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं।
एंड मोर ऑफन द नॉट हमें यही नजर आएगा कि इफ यू वर टू एक्सप्लोर, आपको किसी ना किसी लेवल की डिप्रेशन जरूर मिलेगी इन पीपल हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू दिस अनजस्ट सिचुएशन इन द फैमिली, कि सारी की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल दी जाती है। और साथ में हमें फिर कमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे रेंजिंग फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीम्स, कि और इसको क्या करना है और इसका काम ही क्या है, या तो वी आर गिविंग देम सच, हमने तो इनको जन्नत की अपॉर्चुनिटी दे दी है और यू नो दैट दिस इज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर देम और ये खिदमत करके जन्नत कमा रहे हैं, कि ऑल ऑफ दीज रिलीजियस स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड hiding behind which is an escape from the from sharing the burden of responsibility with that person. And more often than not, this person is going to be either a beti or a bahu, jiske upar this is almost going to be a given ki ye to this is part of your job description aur tumne karna hi kya hai. This is something that you have to do, and there is no second opinion on that.
So, एक तो और फिर इससे हो क्या रहा है, एक तो उसके ऊपर वो जो psychological burden है कि वो जो रोज आना उसने ये सारी बातें भी सुननी है, और फिर वो जो physical burden है कि उसने और ऐसे तमाम cases में हम ये वाली practice भी देखते हैं कि फैमिली ये एक्सपेक्ट करती है कि ये अपना खाना पीना नहाना अपनी केयर छोड़ के उसकी केयर करे.
सो इवन अपने दूसरे बच्चों की, दे प्रोबब्ली हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन एंड दे प्रोबब्ली हैव डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, उसको भी हाउ डू दे बैलेंस दैट.
बिल्कुल, तो एक किस्म का सवाब जो कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि तुम ये कमाओ.
Bilkul. And the comment that Shiva just posted here, thank you for sharing that. Kuch log phir yahan tak bhi jaate hain ki kehte hain ki tumhe kisi gunah ki saza mili hai ki tum is situation mein dale gaye ho, ya even worse than that, agar kisi ke bacche ko paidaishi bimari hai is tarah ki koi, unko kaha jaye कि ये तुम्हारे पे अजाब है या तुम्हारे किसी गुनाह की सजा है, दैट्स जस्ट मतलब एडिंग इंसल्ट टू इंजरी. कि आप टॉक अबाउट नॉट रियलाइजिंग व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू. सो दिस द फर्स्ट थिंग दैट वी आर पुटिंग आउट देयर फॉर द फैमिलीज टू रियलाइज के देयर शुड नॉट बी जस्ट वन पर्सन responsible for care, no matter who that person is, no matter how you know it is impossible to conceive of the idea ki uski aur koi zimmedari nahi hogi aur koi life nahi hogi, that shouldn't be the case. There needs to be reasonable rotation of responsibility, there needs to be breaks, ideally breaks in which agar koi primary carer hai to unko us घर से ही कहीं और जाना फॉर अ फ्यू डेज, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बनती हो कि दे हैव अनदर प्लेस टू बी एट टू समथिंग ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम दैट सिचुएशन. और अगर फैमिलीज ये चीज नहीं रियलाइज करते तो द केयरर देमसेल्व्स should try to bring this in front of the family directly or indirectly, kisi communication channel ke through, towards somebody reasonable in the family, ke unko ye cheez ka ehsaas dilane ki koshish ki jaye. Let's not try to be stronger than we actually are and not speaking up for something which is a basic right. कि एक ब्रेक मांगना, रोटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगना, शेयरिंग द बर्डन मांगना, ये आपका बेसिक राइट है. जस्ट लाइक यू वुडंट हेजिटेट टू आस्क फॉर फूड, यू वुडंट एज हेजिटेट टू आस्क फॉर अ प्लेस टू स्लीप इन योर ओन हाउस, यू शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर दिस बर्डन टू बी शेयर्ड एज वेल. ठीक हो गया. So this is point number one. So this would be the physical dimension of caring for the carers. What else?
इसी physical dimension में ये चीज भी हमें add करनी चाहिए कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जिस बंदे की care की जा रही है उसका अपना physical, उसका अपना weight, उसकी अपनी physique इस तरह की होती है कि वो carer के लिए पॉसिबल नहीं होती कि उसको उठा के बिठाना या उसको साइड चेंज करवाना या उसको बेड चेंज करवाना, वो सब कुछ। और जैसा कि आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो घर की बेटी या बहू होती है ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो एटलीस्ट जो ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल आपको एफर्ट चाहिए, आपको फिजिकल जो है स्ट्रेंथ चाहिए, उस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो इवन के आपका नहीं बनता या आप अभी घर पे नहीं है या आप बिजी हैं, कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एटलीस्ट उन पे ना डाली जाए कि वो एक पूरे एक बड़े बंदे को उनको मजबूर किया जाए कि वो उसको उठाएं और इस सारी एफर्ट में वो अपने आप को भी जख्मी करें और इवन वो जो पर्सन जिसे केयर कर रहे हैं उसको भी खतरे में डालें।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो वी हैव दैट फिजिकल वाली डायमेंशन कवर्ड। बियॉन्ड दिस, द साइकोलॉजिकल टोल दैट इट टेक्स, हाउ डू वी एडवाइस फॉर देम टू मैनेज दैट, द सिंगल केयरर, द प्राइमरी केयर, और द मल्टीपल केयरर्स?
साइकोलॉजिकल जो टॉल है उसके बारे में हम दो तरीके से सोच सकते हैं। कई दफा तो ऐसे होता है कि वो जिस बंदे की केयर की जा रही है वो केयरर उसके साथ कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता बल्कि वो किसी मजबूरी में कर रहा होता है, जिसकी बहुत हमें वाजे मिसाल मिलती है जो बहुत सारे घरों में जो बहुएं जो अपने पेरेंट्स इन लॉज का जो है वो केयर कर रही हैं। तो उसमें ये है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि बेशक वो ऊपर से ये कहें कि नहीं हम चाहते हैं हम करना चाहते हैं, बट हम देखते हैं कि डीप डाउन इस चीज की एक ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है कि दैट वी हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल के इन इन लोगों की केयर करें। तो एक तो ये लोग हैं, इनके यहाँ हमें जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है ये और किस्म की मिलेगी, इट विल बी मोर लाइक फ्रस्ट्रेशन और इट विल बी मोर लाइक के इसकी वजह से मेरे अपने बच्चे या मेरा अपना घर इफेक्ट हो रहा है। जी सर
आई थिंक दिस इज रेलिवेंट इन द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड एज वेल, कि सारा इज आस्किंग हाउ डू आई कंट्रोल माय फ्रस्ट्रेशन, रिमेन कॉर्डियल विद द पीपल अराउंड मी, कंसिडरिंग दैट नोबडी इन माय फैमिली अंडरस्टैंड्स द टोल दैट इट इज टेकिंग ऑन मी। माय इमीडिएट फैमिली इज अनएबल टू एम्पथाइज with what I am going through, having to attend to all of the requirements of a patient with dementia for 15 years.
सो यूसुफ इसमें भी वही वाली चीज के इन वो प्रिंसिपल तो वही रहना चाहिए कि रिस्पेक्टफुली और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इस चीज में शामिल करना, और उसके लिए जैसे आपने कहा कि फैमिली में जो भी रीजनेबल बंदा हो उसको उससे बात करना। लेकिन वी डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे दफा खास तौर पे जब आप इन लॉज में होते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। सो मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन मे बी कि वो जो हस्बैंड हैं कि जिनकी ये पेरेंट्स के आप केयर कर रहे हैं उनको उनसे बात करके और एंड आस्क देम के वो बाकी सबसे जो है वो बात करें कि इसकी वजह से जो है वो घर के बच्चे या घर का माहौल या वो जो बहू है उसकी अपनी सेहत पे क्या असर जो है वो पड़ रहा है। और जे और मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की या रिलीजियस ब्लैकमेलिंग की कि आखिर तुम्हारी भी तो माँ है, उसी तरीके से आप भी उनको वापस ब्लैकमेल करेंगे जितनी माँ मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। इसमें और ये कहने में कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है ये कहने में।
एंड कॉन्सिक्वेंसेस राइट, कि अगर एक बंदे पे इतना टोल डाला जा रहा है और उसकी फ्रस्ट्रेशंस का एहसास नहीं किया जा रहा, इट्स नॉट जस्ट दैट पर्सन दैट इज सफरिंग, एवरीथिंग दैट by extension is a role or responsibility or a relationship of that person. For example, jaise unhone yahan pe share kiya ke children, the frustration gets taken out on them. And we know for a fact ki agar ek untreated, unaddressed, depressive illness hai mother ke andar, then we are setting the children up for developing depression, anxiety, and personality disorders in their lives as they grow older. So the husband or the extended family is not doing their own children any favors, balki they are setting them up to suffer from very serious psychological problems. अगर वो उनकी मदर का ख्याल नहीं रख रहे, इफ दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर मदर्स मेंटल हेल्थ व्हिच इज एज इम्पॉर्टेंट एज द फिजिकल हेल्थ ऑफ द पर्सन दैट शी इज टेकिंग केयर ऑफ, और इसमें इस तरह की चीजें करना कि तुम्हारे तुम्हारा सब्र खत्म हो गया है, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, दिस इज अनरियल. ये बंदा वो इस तरह की बातें करे जो खुद इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा रहा हो, जो खुद नहीं निभा रहा. हाउ आर दे लुकिंग टू टू कॉम्पनसेट और टू मेक यू नो स्प्यू आउट दीज एलिगेशंस एंड दिस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ब्लैकमेल.
सो यूसुफ, जैसे हमने पहले बात की कि एक तो ये केस है जिसमें समवन इज फोर्स्ड टू डू दैट, बट लेकिन और इसमें तो वो जो जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला होगा. लेकिन जो एक जो दूसरा केस है वो ये है कि व्हेन द केयरर वॉलंटरली वो ये कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, व्हेन देयर इज अ कोई सिक कोई बीमार शख्स है हमारी फैमिली में, कोई बाप माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी जो भी, और व्हेन समवन इज डूइंग दैट, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है उसके लिए, और वो और उसके ऊपर जो बर्डन आ रहा है साइकोलॉजिकल, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, उसमें एक किस्म का डिप्रेशन भी है, उसमें एक किस्म का
बिल्कुल ठीक है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कम टू टर्म्स विद द स्पेसिफिक इलनेस. इट इज इम्पॉर्टेंट के उनको उस पर्टिकुलर फिजिकल इलनेस के बारे में जितनी एक अटेंडेंट या एक केयरर को जानकारी होनी चाहिए, they need to go out of their way to get that information and that jankari. They need to have a physician, jo bhi unke jo bhi ill patient hain, unke doctor hain, unke saath ek tasalli se they need to understand everything that they possibly can understand. ताकि जितने प्रॉब्लम्स को वो by appropriate medication, treatment, environmental कंट्रोल मिटिगेट कर सकते हैं, जितने प्रॉब्लम्स को वो कम कर सकते हैं उतनों को तो वो कम करें. जो कुछ मैनेजेबल है, कोई अननेसेसरी बर्डन बाय मिसिंग मेडिकेशंस, बाय नॉट गिविंग द अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस, बाय नॉट टेकिंग केयर ऑफ सिंपल पेन दैट वुड बी वेरी कॉमन राइट, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ लिए जा सकते हैं कि कोई गुम ना हो जाए, उनको चोट ना लग जाए, ऑल ऑफ व्हाट इज नेसेसरी, एनवायरनमेंट को किस तरह से चेंज करना है, उनके कमरे को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को किस तरह से मनूवर करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे शुड बी वेरी वेल अवेयर, दे शुड एक्सेप्ट कि अच्छा, इफ दिस इज अ रोल दैट वी हैव टेकन ऑन, वी नीड टू डू इट वेल. And for that reason, we need to know everything that there is to know about managing them in the best way possible, ताकि हमारे ऊपर कोई extra burden by something that we may have missed out on ना पड़े. एक level पे this information, दूसरे level पे understanding suffering in general, कि हमारे कुछ preconceived notions होते हैं जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट लाइफ ओज अस, वेयर वी शुड बी इन लाइफ, हाउ हैप्पी सक्सेसफुल, एंड यू नो वो जो हमारे सारे ख्वाब होते हैं व्हेन दे हैव बिकम एब्सोल्यूट गोल्स, टू कम टू टर्म्स विद दिस डायमेंशन ऑफ लाइफ इन विच डिफिकल्टी, सफरिंग, पेन, इलनेस is a real possibility. और इस conception को अपने cultural, spiritual, religious, intellectual resources को इस्तेमाल करते हुए suffering के बारे में एक holistic, comprehensive outlook develop करना, अपने attitude, अपने रवैये के बारे में वो कंसेप्शन डेवलप करना, उसको उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करना, जहां पे हम वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन एज मीनिंगफुल, कि हम इस लेवल तक पहुंच सकें, इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकें कि ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में, डिग्रियां लेने में, पॉपुलैरिटी हासिल करने में, द अंडरस्टैंडेबल लैंडमार्क्स और मेजर्स ऑफ सक्सेस वो अपनी जगह पे, ये जो काम है या ये जो एफर्ट है या ये जो सर्विस है, इट इज नो लेस मीनिंगफुल, एंड दैट व्हाट वी आर गेनिंग एज ह्यूमन बीइंग्स अपनी पर्सनालिटी के एतबार से और अपनी स्पिरिचुअलिटी के एतबार से बाय एक्सटेंडिंग दिस सर्विस इज नो लेस एंड परहैप्स ऑन अ लॉट ऑफ काउंट्स मच मोर वर्दी देन अ लॉट ऑफ अदर अचीवमेंट्स दैट मे हैव बीन अचीव्ड और गॉटन हैड यू नॉट टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अप. राइट, सो एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए कहना आसान है, उस चीज़ को सामने रखना आसान है, लेकिन फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली इन दिस सिचुएशन, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी दैट दे हैव टू बी विलिंग टू टेक अप, टू डिवेलप दैट एटीट्यूड, टू डिवेलप दैट कंसेप्शन. जो भी मिसकंसीव्ड हमारे नोशंस हैं, जो नाइव नोशंस हैं रियलिटी के बारे में, लाइफ के बारे में, उनको एड्रेस करना, उनको रीड्रेस करना, और टू बी एबल टू सी दीज एज 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 अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ इन अ वेरी डिफरेंट वे, टू डेवलप दोस कंसेप्शंस.
सो यूसुफ, सो बट दैट डज नॉट साउंड लाइक कि ये कोई बहुत आसान सी चीज है जो कि हम वी जस्ट हम बैठें और हम ज़हन में सोचें और विद एंड वी कम टू एक्सेप्टेंस, इज़न्ट इट?
बिल्कुल ऐसा ही, व्हिच इज़ व्हाई आई सेड कि आपको अपनी कल्चरल रिसोर्सेज, अपनी रिलीजियस स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, अपनी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, यू वुड हैव टू टैप देम, यू वुड हैव टू रियली मेक फुल यूज ऑफ देम, के वो सारी रिसोर्सेज आपको इस तरह की सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने और उस सिचुएशन के साथ बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट करने में कैसे रहनुमाई करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं, हु आर द पीपल दैट यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम. आई थिंक दैट समथिंग दैट द केयरर्स शुड नॉट हेजिटेट टू डू, के इन सारी रिसोर्सेज. जी जी,
आर यू इंप्लाइंग के ये रिसोर्सेज यूज करने के बाद वो एक मेंटल पीस मिल जाएगा और वो जो सफरिंग और फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा?
आई मीन दीज रिसोर्सेज आर नो पैनेसिया, These resources are no panacea. ये भी नहीं है कि इन resources को employ करने का तरीका यही है कि इन एक किताब खोली पढ़ी खत्म की एंड बस जनाब सारा काम हो गया, या किसी से मिले उनसे बातचीत की और जिंदगी तब्दील हो गई और जनाब आई वॉज एबल टू सी के हाउ इनरिचिंग दिस एक्सपीरियंस इज. इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, इट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको इसीलिए मैंने कहा मल्टीपल रिसोर्सेज हैं और उनके मल्टीपल डायमेंशंस हैं. उनमें आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको यूटिलाइज करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए. और यू यू नीड टू डेल्व इनटू दोज रिसोर्सेज टू डिवेलप दैट दैट पॉजिटिव पॉजिटिव कोपिंग एटीट्यूड. तो एक तो आई वुड से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. बी दैट हु हैव हु एवर इज अवेलेबल टू यू टू हेल्प यू डिवेलप दैट. वन थिंग दैट आई हैव एडवाइज्ड अ लॉट ऑफ द पीपल दैट आई वर्क विद हु हैव टू टेक केयर ऑफ क्रॉनिकली अनवेल पीपल, कि आपकी एक्सटेंड आपकी अपनी फैमिली में, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ डॉटर हु इज हैविंग टू टेक केयर ऑफ हर फादर इन अ पर्टिक्युलर आफ्टर एन इलनेस, आफ्टर स्ट्रोक और डिमेंशिया जो भी, देन देर आर अदर सिबलिंग्स हु आर ऑल्सो शेयरिंग दैट बर्डन. वो भी दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देयर फादर्स हेल्थ, देयर फादर्स फिजिकल कंडीशन इज सच. द फैमिली शुड गेट टूगेदर टू टॉक अबाउट देयर ओन मेंटल हेल्थ एज वेल. अगर एक बहन दूसरी बहन को बताती है कि मुझे जब ये खबर मिली कि हमारे फादर को ये हो गया या हमारी मदर को ये हो गया, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर मी, हाउ आई वॉज एबल टू मेक माई पीस विद इट, कम टू टर्म्स विद इट, फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स देम, देन दैट इज द क्लोसेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन यू कैन गेट. एंड देन अगर चार पांच बहन भाई हैं, दो तीन बहन भाई हैं, देन दे शेयर, दे बिकम देयर ओन सपोर्ट ग्रुप. एंड दैट्स हाउ एन आइडियल फैमिली शुड बी. एंड एवरी ईच इंडिविजुअल फील्स कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग देयर वेयर देयर कमिंग फ्रॉम इमोशनली, देयर जर्नी थ्रू finding out about the diagnosis and then traveling the journey of taking care of their unwell relative. So that will become something of a support group within the family. And then additionally, support groups exist for things like these outside of the family as well. Other people who have similar circumstances to share with them, to learn from their experiences, that would be validating as well as उधर से भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी.
सो यूसुफ क्वेश्चंस लेने.
ठीक हो गया. हाँ, आई थिंक अ फ्यू अदर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, के ये तो चलो कमिंग टू टर्म्स विद द डायग्नोसिस, कमिंग टू टर्म्स विद सफरिंग इन जनरल एंड फाइंडिंग सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट फॉर पीपल गोइंग थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन विद इन योर फैमिली और आउटसाइड ऑफ योर फैमिली. फ्यू स्टेप्स ये हो गए. उसके अलावा जब हम कहते हैं कि यू आर रोटेटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ ब्रेक्स, गिव योर सेल्फ एडिक्वेट chance for your physical requirements, diet, exercise, sleep, for your spiritual requirements, prayer, meditation, whatever practices you want to engage in, your intellectual requirements, reading, however it is that you feel that you're growing or that's your area of interest. Independent of that person, try के the rest of your life, whatever time that you get, वहाँ पे gradual ही सही कुछ ना कुछ positive और healthy चल रहा है. Entertainment that would allow for you to disconnect, disengage, and you know, relax, provide you that relaxation that you need. So finding the opportunity for that. And if despite all of these measures on your own, you feel ke baat nahi ban rahi, never hesitate to seek professional help when you have to. And for some people, the severity of the symptoms may warrant ke medications. Medications might help them cope better. ठीक हो गया चलें moving to questions Azam
yes
do you have any particular ones that you saw that we haven't addressed so far
ये जो लास्ट क्वेश्चन है यूसुफ भाई
दिस वन
यस फ्रॉम बोरिंग रजा
एज अपोज्ड टू द मोर इंटरेस्टिंग वन अबाउट व्हाट यू जस्ट सेड इफ देयर इज अ सिक मदर अ सिक एनवायरनमेंट ड्यू टू व्हिच द चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी हाईली एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड एंड नो वन एक्नॉलेजेस दैट एंड दोस चिल्ड्रन टेल देमसेल्व्स दैट दिस इज नॉर्मल बिकॉज़ वेल नो वन सेज इट्स एबनॉर्मल What can possibly these grown-ups going through different disorders do? Gee. So as if I understood the question correctly, ye people who have grown up in such toxic households or unhealthy households, aur ab wo grown-ups ho gaye hain, and now what should they do? Yes?
So, इट विल डिपेंड अपॉन के क्या डिसऑर्डर है और क्या उसमें क्या सेवेरिटी है और वो किस स्टेज पे है ऑफ कोर्स बट जनरली स्पीकिंग दे आर मोर लाइकली टू डेवलप एंजाइटी डिप्रेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स दे कैन गो टूवर्ड्स साइकोसिस ऑफ कोर्स बट लेकिन जनरली स्पीकिंग जैसे यूसुफ भाई ने बात की डॉक्टर यूसुफ ने कि पहली चीज तो ये कि कमिंग टू टर्म्स विद विद इफ आई कैन यूज द टर्म विद द बैगेज यू आर हैविंग वो किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसेस में जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो वही होगा एंड देन आई कैन नॉट टेल के जनरली हम क्या करेंगे because every problem or every disorder that would take a very different shape
fair one thing that I will emphasize on ke as much as we are highlighting and as psychiatrists psychologists we continue to highlight ke childhood mein is tarah ki environment teenage growing up abuse toxic situations ke kis tarah se aapki long term mental health ko influence karte hain we always remember that they influence and they lead to very serious concerns and problems, but they are not the only factors. They are important influencing factors, yes, but they don't take away the entirety of the freedom of the individual we are talking about. My past, my childhood experiences cannot become an excuse for my irresponsible behavior throughout my life. It may be more difficult for me to act responsibly on account of those experiences, but never impossible. And that freedom that I have within my personality coming to terms with that freedom maine coming to terms with the baggage bhi karna hai aur coming to terms with freedom bhi karna hai ha when you're coming to terms with these two poles you negotiate as to how to proceed and if help is needed in catalyzing this process or facilitating this process then we go for that help I did give a talk at on it was an online talk for LUM students, I think a couple of weeks back, on growing up in toxic households. Uski clips aapko kahin na kahin mil jayengi. So there's a little more detail on that there, perhaps. Theek ho gaya. So as we wrap it up, I think most of the other questions that came in some way, we did try to address them in our main session. Hopefully that was beneficial. Do you ever heal yourself without professional help?
Yes, Raza. Most of the time we do.
We should be able to. We should be able to.
Most of the time we do. And we are healed by hamare doston ki jhukte hain. We are healed by hamare doston ke mazak. We are healed by our families. Hamari families jo hame console karti hain. So most of the time we do heal. It's very rare that we need professional help, and by rare I mean that in your 70 years of life, it's very rare. Varna majority of the times we do not need professional help, and we are not broken always. We get traumatized and we get healed.
There are therapeutic resources in our daily routines and our immediate environments more than we are typically willing to recognize, or you know, usually that we advocate. So unko fully highlight karna, balki ek acha therapeutic encounter bhi, ek acha professional therapeutic relationship bhi wohi hoga jo aapko aapke jo routine aur immediate environment ke andar therapeutic resources hain unko dekhna aur unko adequately utilize karna sikha de, if that's where the problem is, right? So
ye humne kitni dafa dekha apne, हम लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि दो बच्चे लड़े और दोनों के एक अंकल हैं, उन्होंने कहा मिट्टी पाओ जप्पी पाओ और मसला खत्म हो गया. तो बहुत सारे इस तरह छोटे छोटे रिसोर्सेज हमारे पास हमारी फैमिलीज में जो है वो पाए जाते हैं. यस बोरिंग रजा, यू कैन हील योरसेल्फ.
But whenever you're not able to, you know where to go. Okay. All right. Chale. Thank you so much, people, for...
First, change your name, please. It reinforces your boredom.
That's not therapeutic. But that's them coming to terms with their with their baggage, apparently.
Yeah, maybe something like Charming Raza.
वो फिर मैं इनसिक्योर होना शुरू हो जाऊंगा. ठीक हो गया. Alright, people, let's all wrap this up. Thank you so much for your questions. Please keep them pouring in. We hope we were able to offer some sort of help for in raising awareness about this topic mostly, and that's what we will continue to do, inshallah. Theek hai Azam, we wrap up.
Okay.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shareeka. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Wa natubu ilayk.